पृष्ठ संख्या 9, शीर्षक है धर्म दर्शन स्वरूप एवं परिभाषा। ऊपर हम देख चुके हैं कि धर्म दर्शन धर्म के अध्ययन की एक पद्धति या विधि है। यह धर्म का दार्शनिक दृष्टि से बौद्धिक विवेचन करता है। धर्म दर्शन किसी विशिष्ट धर्म का अध्ययन नहीं करता, बल्कि सामान्य रूप से धर्म के स्वरूप, कार्य, मूल्य एवं सत्यता का दार्शनिक विवेचन करता है। धर्म का उद्भव श्रद्धायुक्त भय और आश्चर्य की भावना से दर्शन के उद्भव के पहले ही हुआ। दर्शन की उत्पत्ति भी आश्चर्य की भावना से ही बतलाई जाती है, परंतु दर्शन उस आश्चर्य की बौद्धिक व्याख्या करता है, जबकि धर्म आश्चर्य की व्याख्या न करके धार्मिक क्रियाओं यथा पूजा, प्रार्थना, कर्मकांड आदि में जुट जाता है। अतः प्रारंभ से ही धर्म दर्शन का चिंतनीय विषय बन गया है। मानव चेतना में निहित तत्व क्रिया की दृष्टि से धर्म और बौद्धिक विवेचन की दृष्टि से दर्शन बन गया है। दर्शन धर्म की भावना, क्रिया तथा चेतन में निहित तत्वों की मीमांसा करता है। अगला शीर्षक है धर्म दर्शन की परिभाषा। धर्म दर्शन की परिभाषा से इसका स्वरूप और भी स्पष्ट किया जा सकता है। प्रोफेसर डी एम एडवर्ड के अनुसार धर्म दर्शन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। धर्म दर्शन धार्मिक अनुभव के स्वरूप, कार्य, मूल्य तथा सत्यता की दार्शनिक खोज है। प्रोफेसर एडवर्ड आगे यह भी कहते हैं कि धर्म दर्शन इस प्रश्न पर भी विचार करता है कि धर्म अंतिम सत्ता को प्रकट करने में कहाँ तक ठीक और पर्याप्त है। प्रोफेसर डब्ल्यू के राइट के शब्दों में, धर्म दर्शन धर्म की सत्यता तथा धर्म के व्यवहारों, क्रियाओं तथा विश्वासों की मूल विशेषताओं पर संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में विचार करता है, अथवा सत्ता का धर्म से संबंध स्थापित करता है। प्रोफेसर ब्राइटमैन के अनुसार धर्म दर्शन की परिभाषा इस प्रकार है। धर्म दर्शन वह प्रयास है जिससे धर्म की बौद्धिक व्याख्या की खोज होती है। यह धर्म का संबंध अन्य प्रकार के अनुभवों से बतलाकर धार्मिक विश्वासों की सत्यता, धार्मिक मनोवृत्ति तथा क्रियाओं का मूल्य निश्चित करता है। प्रोफेसर जॉन ए निकोलसन के अनुसार धर्म दर्शन का उद्देश्य धार्मिक विश्वासों और उन मौलिक विश्वासों के साथ एकता स्थापित करना है जो मानव जीवन को आकार और दिशा प्रदान करते हैं। पृष्ठ संख्या 10। पेटन ने धर्म दर्शन की परिभाषा कुछ भिन्न प्रकार से की है। उनके अनुसार इसका संबंध धर्म के मूल सिद्धांतों से है। इस अर्थ में धर्म दर्शन धार्मिक दर्शन भी कहा जा सकता है। इसमें धर्म के विभिन्न मंतव्यों और मान्यताओं का तार्किक ढंग से विवेचन किया जाता है। इस अर्थ में धर्म दर्शन और कुछ नहीं, धर्म के परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक मतों का चिंतन एवं विश्लेषण कहा जा सकता है, परंतु पेटन की यह धारणा समीचीन नहीं प्रतीत होती। धर्म दर्शन केवल दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन नहीं, बल्कि धर्म और धार्मिक अनुभूतियों तथा चेतना का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक ढंग से विश्लेषण और छानबीन करता है। अगला शीर्षक है धर्म दर्शन का क्षेत्र। धर्म दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के धर्म, उन धर्मों के विश्वास और उनकी मान्यताएं सम्मिलित रहती हैं। यही नहीं, धार्मिक अनुभूतियां, विश्वास एवं क्रियाएं भी धर्म दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। धर्म दर्शन का क्षेत्र निम्नलिखित रूपों में दिग्दर्शित कराया जा सकता है। अगला शीर्षक है, पहला, धर्म का मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन। कोई भी विषय तथ्यों पर आधारित होता है। धर्म दर्शन तथ्यों के अभाव में अपना अध्ययन नहीं कर सकता, अतः तथ्यों के संकलन और अध्ययन के लिए यह मनोविज्ञान और इतिहास से अपनी विषय सामग्री प्राप्त करता है। मनोविज्ञान में धर्म के आंतरिक पक्ष का, यथा धार्मिक चेतना, अनुभूतियों, प्रेरणाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः धर्म दर्शन धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। धर्म का बाह्य पक्ष भी होता है। अतः धर्म के विकास, परंपरा तथा धार्मिक समुदायों के रीति रिवाज आदि का ज्ञान इतिहास से प्राप्त हो सकता है। इसलिए धर्म दर्शन धर्म का ऐतिहासिक अध्ययन भी करता है। धर्म का समाज से अटूट संबंध है। इस प्रसंग में धर्म और समाज के संबंध के अध्ययन के लिए धर्म दर्शन धर्म समाज विज्ञान का भी अध्ययन करता है। अगला शीर्षक है, दूसरा, धर्म के तात्विक और दार्शनिक पक्ष का अध्ययन। धर्म के विषय में तथ्यों के संकलन के पश्चात धर्म दर्शन अपने प्रमुख कार्यों को संपादित करता है। इसका प्रमुख कार्य धर्म का दार्शनिक विवेचन है। इसके लिए इसे तत्वशास्त्र और दार्शनिक विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। इसका मुख्य विषय ईश्वर विचार है। वह इन प्रश्नों पर प्रमुख रूप से विचार करता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं? ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है या व्यक्तित्व शून्य? ईश्वर के कौन कौन से गुण हैं? ईश्वर का जगत और मनुष्य से क्या संबंध है? यदि ईश्वर का स्वरूप शुभ पूर्ण है तो ईश्वर की सृष्टि में अशुभ क्यों है? अमरत्व क्या है? क्या मनुष्य अमर है? इत्यादि। अगला शीर्षक है, तीसरा, धार्मिक ज्ञान संबंधी अध्ययन। चूंकि धर्म में सभी तात्विक प्रश्न अनुभव के विषय होते हैं, इसलिए धर्म दर्शन इन धार्मिक अनुभवों से संबंधित ज्ञान की प्रामाणिकता का भी अध्ययन करता है। इसके संबंध में वह विभिन्न ज्ञान संबंधी मतों एवं सिद्धांतों की भी आलोचना प्रत्यालोचना करता है। वह धर्म के संदर्भ में बुद्धिवाद, अनुभववाद, अज्ञेयवाद आदि सिद्धांतों का विवेचन करता है। धार्मिक अनुभूतियाँ रहस्यमय होती हैं, इसलिए रहस्यवाद धर्म का एक आवश्यक अंग है। पृष्ठ संख्या 11। धर्म दर्शन इस सिद्धांत की वास्तविकता और अवास्तविकता पर विचार करता है। धर्म मनोविज्ञान में रहस्यवाद संबंधी विपुल साहित्य भरा पड़ा है। धर्म दर्शन धर्म मनोविज्ञान की सहायता से इसका विशद विवेचना करता है। अगला शीर्षक है चौथा, श्रद्धा तर्क एवं मूल्य संबंधी अध्ययन। धर्म श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा से हीन व्यक्ति धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रश्न होता है कि क्या धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है? इसके विषय में यह कहा जाता है कि धार्मिक विचार तर्क पर आधारित नहीं है। धर्म आध्यात्मिकता की पूर्ति करता है। आध्यात्मिकता में जीवन मूल्य निहित है। मनुष्य को इन आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। अतः इस विषय में तर्क करना व्यर्थ है। श्रद्धायुक्त मन से इन मूल्यों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः इस विषय में तर्क मूल्य आदि प्रश्नों पर भी विचार करता है। कुछ प्रत्यक्षवादी धर्म का केवल तार्किक विश्लेषण ही करने लगे हैं, इसलिए धर्म दर्शन में आजकल भाषा विश्लेषण के आधार पर धर्म का मात्र तार्किक विवेचन किया जाता है। परंतु धार्मिक कथनों का विश्लेषण धर्म के क्षेत्र में पूर्ण नहीं किया जा सकता। धर्म के सत्य असत्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसका तात्विक विवेचन अधिक आवश्यक है। अगला शीर्षक है पांचवा है, धर्म का अन्य विषयों से संबंध का अध्ययन। चूंकि ज्ञान अपरिमित है, इसलिए किसी विषय का ज्ञान अपने में पूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक विषय को अन्य विषयों से सहायता लेनी पड़ती है। धर्म को भी ज्ञान की अन्य शाखाओं से सहायता मिलती है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने ज्ञान की समस्त शाखाओं को प्रभावित किया है। धर्म इससे अछूता नहीं है। इसलिए धर्म दर्शन धर्म का विज्ञान से क्या संबंध और विरोध है, इसका अध्ययन करता है। क्या वैज्ञानिक धर्म की स्थापना की जा सकती है? क्या विज्ञान धर्म को असत्य सिद्ध कर सकता है? या क्या धर्म विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ सकता? आदि प्रश्नों पर भी विचार किया जाता है। इसी प्रकार धर्म दर्शन धर्म का कला, नैतिकता, मानव शास्त्र आदि से क्या संबंध है, इसका भी अध्ययन करता है। सारांश यह है कि धर्म दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत धर्म शास्त्र, धर्म विज्ञान की विभिन्न शाखाएं तथा नीति शास्त्र और दर्शन सभी आते हैं। धर्म के संबंध में मानव की सभी अनुभूतियां और तथ्य धर्म दर्शन के विषय हैं। धर्म दर्शन के क्षेत्र का स्पष्टीकरण इसकी समस्याओं से भी हो सकता है। अगला शीर्षक है धर्म दर्शन की समस्याएं। धर्म के क्षेत्र पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि धर्म की अनेक समस्याएं हैं जिनका अध्ययन उसे करना पड़ता है। इन समस्याओं को निम्नलिखित रूपों में प्रकट किया जा सकता है। शीर्षक है पहला, धर्म का मूल स्वरूप क्या है? धर्म दर्शन की पहली समस्या धर्म के मूल स्वरूप के विषय में है। धर्म के विविध और विरोधी रूप देखने में आते हैं। इससे एक समस्या खड़ी हो जाती है कि धर्म का वास्तविक रूप क्या है? वास्तविक धर्म का क्या स्वरूप है? धर्म की उचित परिभाषा क्या दी जा सकती है? धर्म और अन्य विषयों में क्या संबंध है? क्या जीवन में वास्तविक धर्म की कोई उपयोगिता है? आदि समस्याएं धर्म दर्शन के अध्ययन का विषय है। अब दूसरा शीर्षक है धार्मिक अनुभवों की घटना और क्रिया संबंधी समस्याएं। धार्मिक अनुभवों के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक, द्वितीय बाह्य। आंतरिक पक्ष में धार्मिक चेतना संबंधी समस्याएं आती हैं। पृष्ठ संख्या 12। क्या धर्म ज्ञान मूलक है या भावना मूलक अथवा क्रिया मूलक? धर्म की उत्पत्ति के आंतरिक कारण में कौन कौन सी प्रेरणाएं, इच्छाएं और भावनाएं क्रियाशील रहती हैं? इन सभी समस्याओं को धर्म दर्शन मनोविज्ञान की सहायता से हल करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए धर्म मनोविज्ञान का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। बाह्य पक्ष में धार्मिक अनुभूतियों का व्यवहारात्मक रूप आता है। धर्म में निहित क्रियाएं, रीति रिवाज एवं परंपराएं धर्म के बाह्य पक्ष में आती हैं। इनका अध्ययन धर्म दर्शन को आवश्यक रूप से करना पड़ता है। इसके लिए धर्म के ऐतिहासिक रूप का अनुगमन करना पड़ता है। धर्म की उत्पत्ति ऐतिहासिक दृष्टि से कब और किस रूप में हुई? धर्म का आदिम स्वरूप क्या था? धार्मिक क्रियाओं का प्राथमिक स्वरूप कैसा था? धर्म की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं? आदि समस्याएं भी धर्म दर्शन को हल करनी पड़ती है। इन समस्याओं के प्रसंग में ही मानव शास्त्र से भी धर्म दर्शन का संबंध स्थापित करना पड़ता है। अगला शीर्षक है तीसरा, धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता संबंधी समस्याएं। इस समस्या को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अ है ज्ञान संबंधी समस्याएं, बिंदु ब है तत्व संबंधी समस्याएं। शीर्षक है बिंदु अ, ज्ञान संबंधी समस्याएं। क्या मानव मस्तिष्क अतींद्रिय सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? धार्मिक ज्ञान का क्या स्वरूप है? क्या धार्मिक ज्ञान सामान्य वस्तु के ज्ञान के समान ही होता है? क्या विश्वास द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? क्या विश्वास ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोच्च आधार है? यदि धार्मिक ज्ञान अंतर्ज्ञान से प्राप्त किया जाता है तो क्या उसको प्रकट किया जा सकता है या व्यक्ति की अंतः अनुभूति तक ही सीमित रह जाता है? आदि समस्याएं धर्म दर्शन को हल करनी पड़ती है। अगला शीर्षक है बिंदु ब है तत्व संबंधी समस्याएं। तत्व या सत्ता संबंधी समस्याओं पर विचार करते समय धर्म दर्शन को विभिन्न प्रश्नों का हल ढूंढना पड़ता है। क्या सत्ता संबंधी धार्मिक विश्वास का वास्तविकता से मेल कर सकते हैं? इससे संबंधित दो समस्याएं और उत्पन्न होती हैं। क्या धर्म द्वारा विश्व के स्वरूप पर नया प्रकाश पड़ता है? क्या विश्व के संबंध में धर्म संबंधी विश्वास दूसरे दृष्टिकोणों से मेल खाते हैं? क्या विभिन्न धार्मिक मत सत्य के वास्तविक रूप का दावा करते हैं? परंतु यहाँ प्रश्न होता है कि धर्म का कौन कौन सा मत सत्य के अधिक निकट है? क्या सत्ता के संबंध में जीववाद द्वारा स्थापित मत को स्वीकार किया जा सकता है? यदि नहीं तो किस मत से धार्मिक सत्य के निकट पहुंचा जा सकता है? ईश्वरवाद या सर्वेश्वरवाद या बहुतत्ववाद या निरपेक्ष अध्यात्मवाद में कौन सा मत सत्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में श्रेष्ठ कहा जा सकता है? यदि इन सभी मतों से सत्य का ज्ञान संभव नहीं है तो क्या नव यथार्थवाद द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? अगला शीर्षक है चौथा, अशुभ की समस्या। उपर्युक्त में से किसी को भी यदि श्रेष्ठ कहा भी जाए तो भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, जिसका समाधान धर्म दर्शन के अंतर्गत करना पड़ा है। वह है अशुभ की समस्या। यदि ईश्वर जगत का नियंता है और वह सत्य, शुभ और सुंदर आदि सर्वोच्च आदर्शों से संपन्न है, तो विश्व में अशुभ, कष्ट, दुख आदि क्यों है? अगला शीर्षक है, बिंदु पांचवा है, ईश्वर के अस्तित्व संबंधी समस्याएं। धर्म दर्शन की बहुत बड़ी समस्या ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में भी है। ईश्वर सर्वोच्च मूल्य है। मूल्य प्राप्ति ही विकसित धर्म का परम लक्ष्य है। प्रश्न है, यदि ईश्वर सर्वोच्च मूल्य है तो क्या ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जा सकता है? क्या ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए प्रमाण सही कहे जा सकते हैं? क्या ईश्वर को तर्कों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है और ईश्वर ज्ञान का विषय हो सकता है? यदि ज्ञान का विषय हो सकता है तो उसका क्या स्वरूप है? क्या ईश्वर के गुणों की अवधारणा नहीं है? ईश्वर व्यक्तित्व शून्य है या व्यक्तित्व पूर्ण आदि विभिन्न प्रश्न धर्म दर्शन के लिए समस्या रूप में है। पृष्ठ संख्या 13। अगला शीर्षक है, बिंदु 6, अन्य समस्याएं। अनेक अन्य समस्याएं भी हैं जिनका समाधान धर्म दर्शन को करना पड़ता है। जैसे आत्मा का क्या स्वरूप है? क्या आत्मा अमर है? क्या आत्मा की अमरता के प्रमाण सत्य माने जा सकते हैं? यदि आत्मा अमर है तो क्या मनुष्य अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों का फल भोगता है? क्या ईश्वर की अनुकंपा या दया जीव पर होती है और मनुष्य बुरा कर्म करके भी उसकी दया का पात्र होता है? क्या मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है? कर्मवाद या भाग्यवाद में से मानव जीवन में कौन अधिक उचित है? क्या ईश्वर तंत्रता को संकल्प स्वतंत्रता का विरोधी कह सकते हैं? धर्म में धार्मिक प्रतीकों का क्या स्थान है? धार्मिक भाषा का क्या स्वरूप है? क्या विभिन्न धर्मों में किसी आधार पर एकता स्थापित की जा सकती है? आदि विभिन्न समस्याएं धर्म दर्शन के अंतर्गत आती हैं। अब प्रश्न है, धर्म दर्शन इन विभिन्न समस्याओं का किस पद्धति या विधि से अध्ययन करता है। अगला शीर्षक है धर्म दर्शन के अध्ययन की विधियाँ। धर्म दर्शन की समस्याएं जटिल एवं विविध प्रकार की हैं। इनसे यह भी पता चलता है कि धर्म दर्शन इनका अध्ययन केवल दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर ही नहीं करता, बल्कि इतिहास, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाज विज्ञान आदि का भी सहारा लेता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक वैज्ञानिक युग में धर्म और धर्म दर्शन विज्ञान से अछूता नहीं रह सकता। आज कोई भी अध्ययन विज्ञान सम्मत होना चाहिए। वैसे विज्ञान की कुछ सीमाएं हैं जिनके कारण वह धर्म का पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकता। फिर भी वैज्ञानिक परंपरा का निर्वहन तो आवश्यक ही है। जैसे बौद्धिकता, निष्पक्षता, अस्पष्टता, संगतता तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का रहना तो अनिवार्य है। सामान्यतया धर्म दर्शन की विधि दार्शनिक विधि ही है। इसमें विषय का बौद्धिक एवं चिंतनात्मक पद्धति से विवेचन किया जाता है। धर्म दर्शन धार्मिक विश्वास का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करता है। धार्मिक कथनों और वाक्यों की संगतता एवं असंगतता का निर्णय करता है। यही नहीं, वह धर्म द्वारा दिए गए प्रमाणों और तथ्यों की जांच करता है। अंत में मीमांसा, परीक्षण तथा संगतता के निश्चय होने पर सिद्धांत का निर्माण भी करता है। धर्म दर्शन वैज्ञानिक और दार्शनिक विधि की सहायता से धर्म में निर्धारित परम सत्ता को तर्क के आधार पर विश्लेषित करता है। परम सत्ता को तर्कातीत कहना बुद्धि का ही काम है। इसलिए अनेक विचार, अंतर्ज्ञान और तार्किक विवेचन को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते। इसी आधार पर यह देखने में भी आता है कि धर्म दर्शन की विधियों में श्रुति, अंतर्ज्ञान, बुद्धि और अनुभव का समावेश है। प्रोफेसर ए ई बर्ट ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी में इसी आधार पर विधियों का उल्लेख किया है। शीर्षक है पहला श्रुतिमूलक विधि। इस विधि से धार्मिक सत्यता का ज्ञान श्रुतियों और परंपराओं के आधार पर प्राप्त किया जाता है। श्रुतियों को मान्यता इसलिए दी जाती है कि धार्मिक महापुरुष और ऋषि आदि धार्मिक सत्य का ज्ञान साक्षात अनुभव द्वारा प्राप्त करते हैं और उसी को व्यक्त कर देते हैं। इसलिए उनमें अविश्वास का कोई कारण नहीं है। एक दृष्टि से श्रुति अनुभव और बुद्धि पर भी आधारित होती है। इनसे प्राप्त सत्य की तार्किक व्याख्या की जा सकती है। पृष्ठ संख्या 14। अगला शीर्षक है आलोचना। श्रुतियाँ विशिष्ट मत और परंपरा पर आधारित होती हैं और उनमें विश्वास की बाध्यता झलकती है। अतः तर्कों के अभाव में रूढ़िवादी विचारों का पनपना भी असंभव नहीं है। यदि पूर्णतया इस पर आधारित होकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो वह ज्ञान पूर्ण नहीं कहा जा सकता। पुनः वैज्ञानिकता की दृष्टि से केवल श्रुतिमूलक विधि पर्याप्त नहीं ज्ञात होती। अगला शीर्षक है दूसरा अंतर्ज्ञान मूलक विधि। धार्मिक समस्याओं पर विचार करने के लिए दूसरी विधि अंतर्ज्ञान मूलक विधि है। धार्मिक सत्य का रहस्योद्घाटन इतना सरल नहीं है, यह तभी संभव है जब इसका साक्षात अनुभव हो या इसका साक्षात्कार किया जा चुका हो। रहस्यवादी इस प्रकार के ज्ञान के लिए एकमात्र आधार माने जाते हैं, उनको अंतः अनुभूति होती है, उनके कथन में विश्वास किया जा सकता है। शीर्षक है आलोचना। अंतर्ज्ञान से प्राप्त अनुभव को सामान्य भाषा में यदि व्यक्त ही नहीं किया जा सकता और यदि रहस्यवादी के कथन असंगत प्रतीत होते हैं तो इसके द्वारा धार्मिक समस्याओं का हल कैसे हो सकता है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि इसमें दोष हमारी बुद्धि की सीमितता के कारण दृष्टिगत होता है। रहस्यवादी के अनुभव वास्तव में पूर्ण संगत होते हैं। कुछ भी हो, अंतर्ज्ञान मूलक विधि वैज्ञानिकता की दृष्टि से न पूर्ण है और न उसका समुचित उपयोग ही किया जा सकता है। अगला शीर्षक है तीसरा बुद्धिवादी विधि। बुद्धिवादी विचारक बुद्धि, तर्क एवं चिंतन को ही प्रधानता देते हैं। उनके अनुसार रहस्यवादात्मक ज्ञान विरोधों से भरा पड़ा है। वह सत्य जो विरोधपूर्ण और अतार्किक हो, विश्वसनीय नहीं हो सकता। यदि अंतर्ज्ञान तर्क संगत नहीं हो तो वह मान्य नहीं हो सकता। शीर्षक है आलोचना। अतींद्रिय जगत के विषय को बुद्धि द्वारा कैसे समझा जा सकता है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आध्यात्मिक तत्व बुद्धि से परे और तर्कातीत होते हैं। इनका ज्ञान अंतर्ज्ञान से ही संभव है। बुद्धि अपूर्ण और सीमित है और पारमार्थिक तत्व असीमित और पूर्ण है। फिर अपूर्ण से पूर्ण को, सीमित से असीमित को कैसे जाना जा सकता है। अगला शीर्षक है बिंदु चौथा अनुभववादी विधि। इंद्रिया द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान ही इसका प्रमुख आधार है। यह विधि अंतर्ज्ञान और बुद्धिमूलक ज्ञान को असत्य मानती है। इंद्रियों के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान वास्तविक, तथ्यात्मक और प्रामाणिक भी होता है। रहस्यवादी का ज्ञान चूंकि सामान्य लौकिक ज्ञान के सदृश नहीं होता, इसलिए उसको वास्तविक कहा ही नहीं जा सकता। अब शीर्षक है आलोचना। लौकिक वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कहा जा सकता है, परंतु धार्मिक सत्य का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा संभव नहीं कहा जा सकता। धार्मिकता का विषय जैसे ईश्वर, आत्मा और मोक्ष आदि अनुभव प्रसूत न होकर चिरंतन सत्य है। इन विधियों की पर्यालोचना से यही सिद्ध होता है कि इनमें से कोई भी विधि धार्मिक समस्याओं को हल नहीं कर सकती, तो फिर धर्म दर्शन किस प्रकार धार्मिक विषयों का अध्ययन करता है, यह प्रश्न विचारणीय है। पृष्ठ संख्या 15। शीर्षक है चारों विधियों का सम्मिलित योग। धर्म के क्षेत्र में सर्वप्रथम अंतर्ज्ञान मूलक विधि का महत्व आंका गया है। धार्मिक महापुरुष, ऋषि एवं पैगंबर आदि धार्मिक सत्य का साक्षात्कार करते हैं। अंतर्ज्ञान से इन्हें अस्पष्ट ज्ञान होता है, वहीं बाद में श्रुति के माध्यम से प्रकट होते हैं। फिर श्रुतियाँ ही ज्ञान के साधन के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। पुनः श्रुतियों के ज्ञान को साधक अनुभव का विषय बनाता है, उसे अंतर्ज्ञान के द्वारा तर्क संगत बनाने का प्रयास करता है। अगला शीर्षक है समीक्षा। इसमें संदेह नहीं कि धार्मिक विषयों की ज्ञान प्राप्ति में इन चारों विधियों का योग आवश्यक परिलक्षित होता है, परंतु यहाँ दो समस्याएं प्रमुख रूप से उत्पन्न होती हैं। एक ओर वैज्ञानिक युग में श्रुति और अंतर्ज्ञान को कितना महत्व दिया जा सकता है, यह संदेहास्पद है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभूति कभी भी वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती और श्रुतियों, परंपराओं और रूढ़ियों से ग्रस्त होने के कारण तार्किक नहीं हो सकती। दूसरी ओर अनुभव मूलक प्रमाण धार्मिक सत्य के ज्ञान के लिए नितांत अक्षम है। देखा जाता है कि लौकिक विषयों के प्रत्यक्ष अनुभव में ही जब मतभेद होता है और उसमें वस्तुगतता नहीं होती, तो धार्मिक विषय जो अंतः अनुभूत के विषय हैं, जिनका बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता, जो इंद्रियातीत हैं, उनका ज्ञान इस विधि से कैसे हो सकता है। यह भी निश्चित है कि धर्म में श्रुति और अंतर्ज्ञान के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धार्मिक ज्ञान के मूल आधार यही माने जाते हैं। जहां अनुभववादी और बुद्धिवादी विधियां सफल नहीं होती, वहां दोनों विधियां सफल होती हैं। कमी केवल वैज्ञानिकता की है। अगला शीर्षक है निष्कर्ष। गैलवे के शब्दों में धर्म की व्याख्या करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण मनोवृत्ति की आवश्यकता है, जिसके कारण धार्मिक घटनाओं, अनुभूतियों और क्रियाओं की तह तक पहुंच सकते हैं। धर्म दर्शन की सबसे प्रमुख विधि है पूर्वाग्रह रहित विवेचन। बिना प्रयत्न और अनुशासन के सत्य का ज्ञान पूर्ण रूप में नहीं हो सकता। धर्म दर्शन किसी एक विधि की परिधि में नहीं है। आवश्यकता अनुसार वह श्रुति मूलक, अंतर्ज्ञान मूलक, बुद्धिवादी और अनुभववादी विधियों का उपयोग करता है। शर्त यह है कि इन विधियों के उपयोग में बौद्धिकता, तार्किकता एवं वैज्ञानिकता का ध्यान रखना होगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धर्म से संबंधित विषयों और तथ्यों का तार्किक एवं वैज्ञानिक विवेचन ही धर्म दर्शन की विधि है।